ओम शांति। आज की मुरली बहुत सुंदर था ना, एक एक शब्द जैसे दिल में उतर गया। आज खास बाबा संगम युग का लक्ष्य बताया है ना? याद है क्या बताया बाबा ने आज? मैं सार स्टार्टिंग में जो बाबा ने कहा आज वो थोड़ा पढ़ लेती हूँ, तो रिवीजन होगा, तो उसके आधार से फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? मेन तो बाबा आज ये भी कहा ना स्टार्टिंग में, मुरली के स्टार्टिंग में, आपने पुरुषोत्तम चेहरा आपका देखा है आपने? जैसे ब्रह्मा बाबा को वो साक्षात्कार होता था, वो दिखता था, है ना? श्री कृष्ण दिखते थे, मैं तो ऐसा बनूंगा। तो जब दिखते थे तो वो कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाता है ना, कि जैसे गुलजार दादी जब गए ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने से 6 महीने पहले जब गुलजार दादी वतन में गए और वहां संपूर्ण ब्रह्मा को देखा है ना, तो संपूर्ण ब्रह्मा वहां वापस आने के बाद दादी ने कहा कि वहां एक ब्रह्मा है, यहां एक ब्रह्मा है, लेकिन वहां वाला ब्रह्मा ऐसा ब्रह्मा नहीं है, तो इतना स्पष्ट नहीं था वो ब्रह्मा कौन है। फिर दोबारा जब गुलजार दादी गए फिर बताया कि मैं संपूर्ण ब्रह्मा हूं, तो फिर ब्रह्मा बाबा को लगा कि हाँ मुझे ऐसा बनना पड़ेगा, वो संपूर्ण है, वहां तक पहुंचना है। तो संपूर्णता को जब हम देखेंगे तो पता चलेगा उसमें और इसमें क्या अंतर है, और मुझे वहां तक पहुंचना है ना? तो खुद का भी अभी हमें देखना है कि हमारा संपूर्ण स्वरूप कौन सा है। देवी देवताओं में भी लक्ष्मी नारायण बनना है वो तो सीट टेकन है वो लिया गया ऑलरेडी, लक्ष्मी नारायण का सीट तो ऑक्यूपाइड हो गया, अभी वो वेकेंट नहीं है, है ना? तो दूसरी सीट्स खाली है, वो सीट्स मुझको भरना है। तो खुद को वो इतना विश्वास हो कि हाँ मैं तो वहां ऐसा बनने वाली हूँ या बनने वाला हूँ, तो फिर उस जैसे वहां तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ हम बहुत इजीली कर सकते। डिफरेंस क्या है वो हमें समझ में आना चाहिए, है ना? तो बाबा आज क्या कहा, मीठे बच्चे मोस्ट स्वीटेस्ट बाप इस कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। स्वीट माना मीठा, वो तो ट्रांसलेशन है स्वीट माना मीठा है, मीठा माना सुंदर, शारीरिक रूप केवल बाहर से, हाँ स्वीट माना दैवी गुणों से भरपूर, सर्वगुण संपन्न, है ना? तुम्हें भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है, है ना? हमें भी अभी सर्व गुणों से संपन्न स्वीटेस्ट बनना है। और प्रश्न क्या था आज का? हाँ, स्वयं को परफेक्ट बनाने की कौन कौन सी युक्तियां बाप ने सुनाई है? उत्तर है स्वयं को परफेक्ट बनाना है तो क्या है, ईमानदारी से स्वयं की जांच करो, है ना? ऐसे नहीं कि हाँ मेरे में कोई डिफेक्ट नहीं है, नहीं, ईमानदारी से ऑनेस्टी से खुद को देखना है और मेरे में क्या डिफेक्ट है वो पहचानना है, क्योंकि जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक हम निकाल नहीं पाते, है ना? रियलाइजेशन बहुत बड़ी शक्ति है। अगर रियलाइज ही नहीं हुआ है मुझे मेरे अंदर ये डिफेक्ट है, मेरे अंदर अहंकार है या लोभ है जो भी है, अगर मेरे अंदर वो है रियलाइज ही नहीं हुआ है तो उसको मैं निकाल नहीं सकती हूँ। तो इसलिए ऑनेस्टी से हमें अपने आप को आज देखेंगे, ठीक है? सबके पास नोटबुक पेन है? हाँ, नोटबुक पेन निकालना, हाँ मैं बताती हूँ फिर क्या कब करना है। तो उत्तर था बाबा का, स्वयं को परफेक्ट बनाना है तो ईमानदारी से स्वयं की जांच करो कि पहला वाला था मेरे में अभी तक क्या क्या खामियां हैं, है ना? अब तक अगर नहीं देखा है तो आज देखेंगे, ठीक है। दूसरी बात है, सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं देता हूं, क्योंकि अगर हम पुण्य आत्मा बनना है या फिर देवता बनना है, पाप जो कर्म हो रहे हैं हमारा वो तो बंद करना पड़ेगा, तब तो पुण्य कर्म या श्रेष्ठ कर्म का खाता बढ़ेगा। तो इसलिए चार्ट लिखने की बात बाबा कह रहे हैं, जांच करो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं देता हूं। और तीसरी बात है, बाप की याद की करंट लेकर भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करता हूं। पहले कमी कमजोरियां हैं लेकिन बाबा मददगार है ना, बाबा मदद भी दे रहे हैं, बाबा से वो करंट लेकर के हमें अपने कमियों को भस्म कर देना है। और तीसरी बात है, बाप की याद की वो तो हो गया। चौथी बात, दूसरों की सर्विस को साथ सर्विस के साथ मैं अपनी भी सर्विस करता हूं, केवल वाचा कर्मणा की सेवा ना करके के अपना भी सेवा करना है, अपनी भी सेवा करनी है, है ना। और पांचवी बात, कितना समय बाप की याद में रह अथा सुखों का अनुभव करता हूं, सतो प्रधान कितना बना हूं। तो ये बातें थी आज की। और लास्ट शब्द था बाबा का, मुरली का, बहुत मुझे टच हो गया कि माया के भूत अगर अंदर रहेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे। कितना भी आप पुरुषार्थ करो, अगर भूत है, कमी कमजोरियां हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, वो पीछे खींचता रहेगा ना, पीछे खींचता रहेगा। इसलिए सबसे पहला जो हमें करना है, उन भूतों को निकालना है, उन कमी कमजोरियों को निकालना है, तब जाकर के थोड़ा भी हम पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा भी मेहनत करते हैं, वो हम फिर सफलता को हम पा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ऐसे पुरुषोत्तम या डायमंड आज हमें बनना है, उसकी विधि क्या है वो हमें समझने की बात है। अपने ही डिफेक्ट को देखते हुए उसको निकाल करके परफेक्ट बनने की तरफ हमें जाना है। एक मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर रीति से कहा है कि जैसे शरीर में बीमारियां होती है ना, शरीर में बीमारियां क्यों होती है, विटामिन्स की कमी के कारण से, मिनरल्स की कमी के कारण से, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है शरीर को, अगर उनमें कमी होता है तो बीमारियां होती है ना। तो जैसे शरीर में पानी की कमी होता है तो फिर प्यास लगता है, ऐसे आत्मा में कमी कमजोरियां कहां से आई, बीमारियां कहां से आई, आत्मा में गुण और शक्तियों की कमी है। उन गुण और शक्तियों को जब हम पहचान कर उसको हम धारण करते हैं तो फिर वो पर्टिकुलर जो डिफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है कि मुझे क्रोध नहीं करना, नहीं करना, नहीं। क्रोध के बजाय उसके ऑपोजिट में क्या है, शांति, है ना। शांति की शक्ति को जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतना क्रोध हमारा कम होता जाएगा, वो डिफेक्ट हमारा कम होता जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप बनना है, समझ, ज्ञान माना समझ है, पूरा ही हमारा जीवन जो है ब्राह्मण जीवन वो ज्ञान के आधार पर टिका हुआ है, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप जो बनता है वो फिर अनुभवी स्वरूप बन जाता है। और ज्ञान स्वरूप माना, ज्ञान स्वरूप बना केवल सुनना, बाबा कहते हैं मनन की शक्ति, बाबा जो मुरली में सुनाते हैं उसको फिर अपना बनाना है तो फिर मनन की शक्ति, जितना मैं मनन करती जाऊंगी वो ज्ञान की पॉइंट अपना बनता है। उसके आधार से हम अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो और ज्ञान में भी सबसे पहले जो फाउंडेशन है परिवर्तन का वो है स्मृति स्वरूप, है ना। बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप बनेंगे तो समर्थि स्वरूप बन जाएंगे, लेकिन बीच में भी एक लंबा रास्ता है। जब स्मृति स्वरूप बनेंगे तो क्या होगा, स्मृति स्वरूप बनेंगे, स्मृति जब हमारा होगा तो स्थिति बनता है। स्मृति माना याद, मुझे याद आएगा कि मैं आत्मा कौन हूं, है ना। स्मृति, जब स्मृति होगा मेरी स्थिति बनती है, मेरा स्थिति फिर ऊंचा हो जाएगा। स्थिति जब बनता है स्वरूप बन जाएंगे, उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, वो गहराई का अनुभव करेंगे, स्वरूप बन जाएंगे, तो स्वरूप से फिर समर्थि बन जाएगा। सिर्फ स्मृति से समर्थि नहीं बनेगा, सिर्फ याद करने से हमारी ताकत नहीं, समर्थि माना शक्ति, है ना। समर्थि माना कैपेबिलिटी, है ना। कैपेबिलिटी हमारे अंदर, वो समर्थि केवल स्मृति से याद करने से, हाँ मैं सर्वशक्तिमान हूं याद करने से वो ताकत आ जाएगी आत्मा के अंदर, ये जरूरी नहीं है। लेकिन लंबे काल का अभ्यास, जब मैं स्मृति में स्थित हो जाती हूं फिर वो स्थिति बनता है, स्थिति से स्वरूप, स्वरूप से फिर समर्थि बन जाता है ना। तो इसीलिए आज हम स्मृति कौन कौन से वीकनेसेस के लिए, कौन कौन से डिफेक्ट के लिए, कौन कौन से स्मृतियां हमें याद करना है, वो अभ्यास करना है, एक एक बात को हम उठाते हैं। कितने कमजोरियां हैं लिस्ट अगर निकाले तो, गुणों की संख्या तो 36 है, ये उससे भी ज्यादा है, है ना। और वीकनेसेस के कमी कमजोरियों का लिस्ट कितना है, कमी कमजोरियों का लिस्ट कितना है, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आज मैं लिस्ट निकाली हूं 15, ठीक है। तो 15 कमियों को फिर हम कैसे निकालेंगे, कैसे, कौन से स्मृति को अपनाना होगा, क्या सोचना है, उस आधार से हम अपने आप को देखेंगे, फिर हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और बहुत बड़ा वाला जो बार बार बाबा कहते हैं काम विकार, है ना। तो 5 ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, चिंता और भी लंबा चौड़ा है ना? वो 15 सारे हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली बात है काम विकार या इच्छाएं। चलो बाबा के पास आए तो काम विकार तो मेजॉरिटी निकल ही जाता है कि हमें पता है उससे फायदे क्या क्या होते हैं, तो इसीलिए वो मेजॉरिटी वो निकल ही जाता है। लेकिन सूक्ष्म रूप इच्छाएं, अच्छा लगना या इच्छाएं, तो इच्छाएं आने से प्रॉब्लम क्या होता है, और कौन सी इच्छाएं रखनी है और कौन सी इच्छाएं नहीं रखनी है, शुभ इच्छाएं, कौन सी शुभ इच्छाएं हैं, पुरुषार्थ की इच्छा रखनी है, मेहनत की इच्छा रखनी है, प्रारब्ध की इच्छा नहीं रखनी है। प्रारब्ध माना रिटर्न, रिजल्ट, मैं ये भाषण किया तो ये रिजल्ट मिल जाना चाहिए, मैंने ये सेवा की तो ये रिजल्ट अभी अभी मुझे मिल जाना चाहिए, वाह मिल जाना चाहिए, लोगों को, लोग मुझे पूछे करे, तो ये हम रिजल्ट तुरंत हम चाहते हैं, वो इच्छाएं न रख कर के केवल मेहनत पुरुषार्थ के बारे में इच्छा जरूर रखना है। अगर ये इच्छा नहीं है कि सुबह उठना है तो फिर हम उठ नहीं सकते हैं, पुरुषार्थ करना है, मेहनत करना है, ये इच्छा तो रखनी है, है ना। तो और इसमें भी जब लोगों से इच्छा रखते हैं, ये मेरे से अच्छा, वो तो भविष्य में मिलेगा ना, भविष्य में मिलेगा वो तो, लेकिन तुरंत अभी अभी चाहिए, कच्चा फल खाने की बात है, वो तो भविष्य में बाबा जो देगा देगा, वो तो परफेक्ट तो देंगे ही ना, ऐसा उसमें तो अन्याय नहीं करेंगे, जो मैंने कर्म किया है, जो मैंने पुरुषार्थ किया है, तो उसके अनुसार तो मेरा प्रारब्ध तो निश्चित है भविष्य में। लेकिन अभी अभी मैं सोचूं कि मुझे क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, मुझे ये सेवा करनी है या मुझे ये काम करना है, या मुझे मैं इतना सारी सेवा किया है लेकिन मुझे वाहवा नहीं मिल रहा, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तो ये सारी बातें जो होती है ना, तो इस चक्कर में हमें नहीं आना है। इन इच्छाओं से मुक्त होने के लिए क्या सोचना है, कौन सी स्मृति अपनानी है? करण करावनहार बाप करा रहे हैं, और जैसे लोगों से भी ये इच्छा रखते हैं ना, ये मेरे से अच्छा बात करे, मेरे मुझे रेस्पेक्ट दे, तो ये सारी इच्छाएं होती है। तो उसके लिए क्या करना है? मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, और ये भी अच्छा है एक बाबा दूसरा ना कोई, लेकिन पवित्रता जितना हमारा मजबूत होता जाएगा ना, ये सारी इच्छाएं क्यों? क्योंकि मैं संपूर्ण नहीं हूं, मैं कहीं ना कहीं खाली हूं, तो इसलिए मुझे चाहिए, मुझे यहां से भरना है, लोगों से भरना है, मैं बाबा से नहीं भर रही हूं, आत्मा तो खाली है, तो आत्मा को भरना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं से तो भरना पड़ेगा। अगर मैं बाबा से भर नहीं रही हूं तो मेरी इच्छा क्या होगी, यहां से भरने की कोशिश करती हूं, लोग मुझे पूछे, रेस्पेक्ट दे, प्यार दे, रिकॉग्निशन दे, तो ये इच्छा हम रखते हैं, इसके बजाय केवल बाबा, जो भी मुझे आत्मा को चाहिए मैं बाबा से लेती जाऊं, है ना, तो फिर आत्मा भरपूर होती जाएगी, फिर कामनाएं नहीं रहेगी, कोई इच्छाएं नहीं रहेगी। तो इसीलिए एक बाबा से भरने की इच्छा रखना है। और दूसरी बात, और जैसे जैसे हम देखते जाएंगे, अपने आप को नंबर देना, ये कमी कितना है आपके अंदर, 0 से 10 के बीच में आपके अंदर कितना है वो कमी, वो अपने आप को देखना, और मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, तो उसको अगर खुद बिल्कुल नहीं है कामनाएं जो कुछ भी, 0 दे सकते हैं, बहुत ज्यादा है तो 10 दे सकते हैं, है ना। तो आप अपने आप को जज करना, आज अपना जज बन जाना, ठीक है। और दूसरी कमजोरी क्रोध है ना, क्रोध के लिए जब क्रोध आता है तो तुरंत आ जाता है ना, वो कहके नहीं आता है, वो क्रोध अगर किसी के अंदर है, और अलग अलग स्टेजेस का क्रोध होता है, बहुत ज्यादा क्रोध जो आग बबूला हो जाए, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा अंदर ही अंदर नाराज हो जाना, रूठ जाना, रूस जाना, ये सब क्रोध के अंश है ना। तो क्रोध क्यों आता है, जैसा मैं चाहूं वैसा जब काम नहीं होता है तब क्रोध आता है, और हर बार मैं जैसा चाहूं वैसा तो होगा नहीं, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, वहां क्यों ये सोच रहे हैं कि मैं जैसा सोचूं वैसा ही होना है, क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर ये संस्कार है कंट्रोल करने की, दूसरे शब्दों में कहते हैं कंट्रोल फ्रीक्स, है ना, मैं जैसा चाहूं वैसा ही होना चाहिए, कंट्रोल, वो तो अलग बात है, लेकिन यहां परिस्थितियों में लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं जैसा चाहूं वैसा ही करना है, वो लोगों को कंट्रोल करने की सोच रहे हैं, वो ना रख करके उसको हम कैसे काटे या उसको कैसे निकाले, कंट्रोल करने का जो संस्कार है, हम स्वराज्य अधिकारी बने ना, दूसरों पर राज्य करने के लिए बाबा ने ही बोला है, दूसरों पर राज्य कब करेंगे हम? थोड़ा पंखा चला लो ना, पंखा नहीं चल रहा है मेरे को, दूसरों पर राज्य तो सतयुग में करेंगे, यहां तो दूसरों पर राज्य नहीं करना है, खुद पर राज्य करना है। तो इसीलिए स्वमान अपनाना है, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, मेरे हर कर्मेंद्रिया मेरे कंट्रोल में है। कंट्रोलिंग जो संस्कार है वो रखे भले, लेकिन दूसरों पर कंट्रोल ना करके अपने ही कर्मेंद्रियों पर मुझे कंट्रोल करना है। तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, ये स्वमान हम बार बार अभ्यास करें। अगर खुद के अंदर वो क्रोध या क्रोध के अंश है, और दूसरी बात है शांति की शक्ति। जितना मैं आत्मा शांति की अनुभूति करती जाऊंगी, धीरे 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 क्रोध आत्मा के अंदर से कम होता जाएगा। और तीसरी बात, तीसरा अवगुण लोभ। लोभ माना, लोभ और कामना में क्या अंतर है? कामनाओं में लोगों के प्रति हमारी कामनाएं होती है कि मुझे प्यार मिले, सम्मान मिले, ये लोगों के एक्सपेक्टेशंस होता है लोगों से। और यहां लोभ में वस्तुओं को संग्रह करने की आदत, जरूरत से ज्यादा संग्रह करने की आदत, लोभ। जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा सोना, जरूरत से ज्यादा जो भी कंजम्पशन, जो भी हम यूज करते हैं, तो वो सब कुछ लोभ में गिना जाएगा। और फिर उसको कैसे निकाले? अच्छी अच्छी चीजें खाने की आदत, वो भी है ना, जरूरत से ज्यादा खाना, अच्छी अच्छी, ये पर्टिकुलर होते हैं ना कि मुझे यही खाना है, ये नहीं खाना है, तो वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं लोग ना, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। ब्राह्मण बनने के बाद तो हम योगी हैं, है ना, योगी माना जो बाबा के घर में मिलता है वो ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत हेल्थ कॉन्शियस तो होना चाहिए, लेकिन बहुत पर्टिकुलर हो जाए कि वो नहीं होना चाहिए। हाँ जी, लोभ में भी आता है, आलस में भी आता है। लोभ होता है तो भी वो आलस तो थोड़ा और सूक्ष्म है, काम करने में भी आलस आता है, है ना, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा सोएंगे तो ये बात है। तो वो लोभ का उत्पन्न कहां से होता है? कहते हैं ना, जब स्ट्रेस होता है तो ज्यादा खाने की, चॉकलेट्स खा लेते हैं या ज्यादा स्वीट्स खाते, कार्बोहाइड्रेट्स खा लेते हैं, तनाव होता है तो फिर डिप्रेशन में आते हैं तो ज्यादा खाते हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग आदत होती है। तो माना यहां कहीं ना कहीं खाली है ना, हाँ यहां खाली है, ये बहुत ज्यादा खाली है यहां, तो इसीलिए वो सोचते हैं शायद इससे मैं भर लूं, खाने से मैं भर लूं, तो उनको लगता है कि संतुष्टि, कहीं से तो भर रहे हैं क्योंकि योग लगा करके वहां से भर नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए स्थूल चीजों से भरने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए क्या करना होगा, लोभ को निकालना है तो क्या स्वमान लेना होगा, मैं संतुष्ट मणि हूं, है ना। जब संतुष्टता अंदर आ जाए, आत्मा के अंदर आ जाते हैं और दूसरे गुण आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसलिए बाबा कहते हैं सर्व गुणों का राजा संतुष्टता है। संतुष्ट आत्मा को ऑटोमेटिकली सब कुछ मिल जाता है, इच्छा नहीं होता है कि हाँ ये मिले ये मिले ये मिले, लेकिन उनको ज्यादा लोग देते हैं, है ना, चाहे इच्छा नहीं होती, लोभ नहीं होता, तो वो फिर ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। संतुष्ट मणि हूं, इसका अभ्यास हमें करना है। और कुछ लोगों के अंदर ना ये भी संस्कार होता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं करना है। ठीक है, मिल रहा है तो ले लेना है, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है। बाबा इसलिए कहते हैं ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, बीच का रहना है, बहुत बीच में रहना है। और ठीक है, कुछ लोग कुछ दे रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है, ले तो लिया, उनका दिल रखा, लेकिन मेरे हाथ में है कि मुझे उसको कैसे यूज करना है, है ना। तो कुछ दिन पहले मैं कहीं सेंटर पे गई थी, तो एक भाई आकर के मुझे कहा कि मुझे ना आपको सेवा के लिए कहीं एक सेंटर पे गए थे, और उन्होंने एक भाई ने कहा कि मुझे आपको मोबाइल फोन देना है, और वो भी कितने रुपए का, 1 लाख के ऊपर वाला। तो मैंने बोला मैं तो नहीं यूज करती हूँ इतना एक्सपेंसिव वाला, तो मैं तो समर्पित है नहीं, नहीं मुझे तो देना ही है, आपको देना है, मैं तो दूंगा, मैं तो खरीद लिया है तो देना ही है। तो क्या बोलो, तो ठीक है, तो ले तो लिया लेकिन मैं यूज नहीं कर रही हूँ उसको, तो मैं ना उसको सफल कर दिया, वो कुछ भी हो गया किया, लेकिन मैं ना ठीक है, लेकिन ये भी इच्छा नहीं, नहीं ना, वो भी जब मना करते हैं ना, जो बाबा के यज्ञ में आने वाली बात चीजें होती है वो भी नहीं आता है। तो इसलिए ठीक है, जो हो रहा है होने दीजिए, लेकिन मुझे खुद को डिसाइड करना है मुझे कितना यूज करना है, कितना यूज नहीं करना है, है ना। और चौथा डिफेक्ट मोह, है ना। मोह को कैसे, मोह कहां से आता है, मेरापन, मेरा, मेरे लोग, मेरे व्यक्ति, मेरा पति, मेरा मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरापन, उसके साथ अटैचमेंट क्यों है, अटैचमेंट, वो मोह क्यों है, कहां से आया है वो मोह क्यों है, अधिकार, अधिकार है, लेकिन मोह क्यों है उस पर्टिकुलर व्यक्ति से या वस्तु से। अगर मुझे अपनी गाड़ी से बहुत मोह है, अगर थोड़ा भी स्क्रैच हो गया ना, और थोड़ा भी ये हो गया तो बहुत दुख होता है ना। हाँ, मेरापन, वो मेरापन भी क्यों आया है, अच्छा भी क्यों लग रहा है, खुद में खुद को रिकग्नाइज कर रही हूं इसके द्वारा, इसके द्वारा मैं अपने आप को रिकग्नाइज कर रही हूं। अगर मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरा स्टेटस सिंबल है, राइट, तो वो मैं अपने साथ वो उसको आइडेंटिफाई कर रही हूं, ये मेरी गाड़ी इसीलिए कि मेरा स्टेटस सिंबल है वो, है ना। तो वो अगर नहीं है तो लोग क्या समझेंगे, मेरा स्टेटस तो रहेगा नहीं। और व्यक्तियों के प्रति अगर मेरा मोह है, अगर ये नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूं, ये व्यक्ति मेरे जिंदगी में है इसीलिए मैं कुछ हूं, ये व्यक्ति निकल जाएगा या चला जाएगा मैं कुछ नहीं हूं। तो मैं ना, मैं हम अपाइज हो जाते हैं, डिपेंडेंसी इतना बढ़ जाता है, हाँ जी, इनसेक्योर, इनसेक्योर भी क्यों है, मोह के कारण से इनसिक्योरिटी आता है, पावर की कौन सी कमी, कौन सी पावर की कमी है, वही तो मैं कह रही हूं ना। हाँ, अभी सोच, अभी नहीं सोचिए, लेकिन जो बोल रही हूं ना उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है, कि अभी ये मोह क्यों आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऊपर, उसके प्रति मेरा रिकग्निशन है, और उसके थ्रू मैं अपने आप को रिकग्नाइज कर रही हूं, ये नहीं है तो मेरा स्टेटस बहुत कम हो जाएगा, ये व्यक्ति नहीं है मेरे जीवन में, मैं कुछ नहीं हूं फिर, तो अपने आप को इस व्यक्ति के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी मेरा बढ़ गया है। तो इसलिए अगर वो व्यक्ति अपनी जिंदगी से निकल जाते हैं तो फिर बहुत खालीपन, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये मेरा कौन है, बाबा मेरा, है ना। जब हम बाबा को अपना बना लेते हैं तो इनके साथ, सभी के साथ तो संबंध निभाना ही है, लेकिन बाबा मेरा, इमोशनल डिपेंडेंसी मेरा बाबा के ऊपर है बस, मेंटल और इमोशनल डिपेंडेंसी बाबा के ऊपर, लेकिन हाँ, इन सभी से मुझे सहयोग लेना है, सहयोग देना है, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं है, पूरी तरह मैं निर्भर नहीं हूं उनके ऊपर। समझ में आया? सहयोग लेना देना है लेकिन उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। तो इसलिए एक बाबा दूसरा ना कोई। इमोशनल और मेंटल डिपेंडेंसी जब बाबा के ऊपर है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। और दूसरों के साथ जब हम संबंध निभाते हैं तो वहां मोह ना हो, उसके लिए क्या करना होगा? वहां बाबा को बीच में लाना है। वहां बाबा को बीच में लाइए। ये कौन है? बाबा का बच्चा है ना? भले मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, लेकिन बाबा का बच्चा है। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है इस आत्मा की देखभाल करने के लिए। जब बीच बीच में बाबा को ले आते हैं और ट्रस्टी बन जाते हैं, तो वहां मोह नहीं होता, मेरापन निकल जाता है। और पांचवा विकार, अहंकार, अभिमान, है ना? हाँ जी, हाँ, मोह के लिए एक बाबा दूसरा ना कोई, है ना? स्वमान बोल लेना है। हाँ, अहंकार, अहंकार कहां से आया? मैंपन, मैंपन के कारण से क्या होगा? मुझे ही अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, मैं ही आगे बढ़ू, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो खुद का जो गुणगान करते हैं मियां मिट्टू, वो उनके अंदर अहंकार होता है। जिनके अंदर अहंकार होगा उनको अभिमान, जिनका अंदर अभिमान होगा उनको अपमान भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो अहंकार कहां से, उसको निकालने के लिए बाबा ने ये बहुत सुंदर बात कही है, जब भी शब्द यूज करो मैं आत्मा, ये याद रखना है ना। जब मैं आत्मा याद रखेंगे तो स्वमान याद आएगा, मैं देह नहीं हूं, मैं नाम रूप, ये इसका वो रूप ना याद आए। मैं जब भी हम यूज करते हैं शब्द मैं, आत्मा याद आए, तो वहां अभिमान नहीं होगा। और अभिमान जब नहीं होगा, यूजुअली अभिमान वाले क्या सोचते हैं, उनकी सोचने की प्रक्रिया क्या होता है? सोचने की प्रक्रिया क्या होता है? मैं बहुत अच्छी हूं, ये अच्छे नहीं है। मैं राइट हूं, ये रॉन्ग है। मैं ही राइट हूं, ये रॉन्ग है, है ना? तो अपने को अच्छा समझते हैं, दूसरों को अच्छा नहीं समझते हैं। ये अभिमान की निशानी है। मैं राइट हूं, ये रॉन्ग है। भले कुछ बातों में रॉन्ग हो सकता है, लेकिन फिर मैं ही हमेशा, जो भी मैं बोल रही हूं मैं ही राइट हूं, वो भी तो अभिमान आ जाता है। तो इसके बजाय क्या सोचना है, इसके बजाय क्या सोचना है? मैं अच्छी हूं तो वो आत्मा भी अच्छी है ना? तो ये भी सोचना है कि केवल ये संसार में मैं ही अच्छी हूं, ऐसा नहीं है ना। सभी अच्छे हैं अपने अपने तरीके से, तो वो भी अच्छे हैं तो मैं भी अच्छी हूं ना। ऐसा नहीं कि वो अच्छे हैं मैं अच्छी नहीं हूं, तो फिर डिप्रेशन आ जाएगा, है ना? तो वो भी नहीं, वो भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूं। जब एक समान देखते हैं एक दूसरे को, तो फिर वो अभिमान नहीं आएगा, अहंकार नहीं आ सकता, वहां नम्रता आएगी। फिर उसके बाद ईर्ष्या, बहुत सूक्ष्म है ईर्ष्या, है ना? तो ईर्ष्या कब आता है? कब ईर्ष्या आता है? जब कोई आगे बढ़ते हैं, या उस व्यक्ति के पास जो चीज है और मेरे पास नहीं है, तब ईर्ष्या आएगा। उसके पास है, मेरे पास नहीं है। उसको मान सम्मान मिल रहा है, मेरे को नहीं है। उसके पास ये चीजें हैं तो मेरे पास नहीं है, तो तब ईर्ष्या आता है। वो भी जब हम जीन्स होते हैं, एक समान के जो लोग होते हैं उनके उसके पास है लेकिन मेरे पास नहीं है, तो ईर्ष्या आता है। अगर बड़ों के पास, सीनियर्स के पास कुछ है लेकिन मेरे पास नहीं है, वहां ईर्ष्या नहीं आएगा। क्यों वहां ईर्ष्या क्यों नहीं आएगा? केवल हम जीन्स के प्रति हमारा ईर्ष्या क्यों होता है? कंपैरिजन क्यों हो रहा है यहां? उनके साथ क्यों ना कंपैरिजन हो रहा है? हाँ, मम्मा बाबा कितने अच्छे थे, माना दादियां कितनी अच्छी थी, तो उनके प्रति हमारी ईर्ष्या नहीं होती है। लेकिन अगर इन्होंने भी ये भी अगर हम जींस कोई है वो भी पुरुषार्थ कर रही है, कर रहा है और बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति मेरा ईर्ष्या है लेकिन सम्मान नहीं है। क्यों? बाबा मम्मा दादियों के प्रति मेरा सम्मान है, रेस्पेक्ट है, इसके प्रति क्यों नहीं है? ये अंतर क्यों हो गया? अंतर क्यों हो गया? क्योंकि एक्सेप्टेंस की कमी है। वहां से मुझे प्रेरणा मिल रहा है, बड़ों से मैं प्रेरणा ले रही हूं, दादियों ने कैसे पुरुषार्थ किया, मेहनत की, मैं प्रेरणा लेकर के मैं ऐसे मेहनत करने की कोशिश कर रही हूं प्रेरणा के आधार से। यहां मैं प्रेरणा नहीं ले रही हूं और ही उसको रोकने की कोशिश कर रही हूं, नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजने की कोशिश कर रही हूं। क्यों? एक्सेप्टेंस नहीं है, मैंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, मैं उसको समा नहीं पा रही हूं कि मैं उसके पास है और मेरे पास नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। जहां जब एक्सेप्टेंस आ जाएगा ना, उस आत्मा ने भी बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छी पुरुषार्थी है, तो जब मैं उसका उसके पॉजिटिव साइड को देखना शुरू करती हूं, एक्सेप्ट कर लूंगी, तो वहां से भी मैं प्रेरणा लेने की कोशिश करूंगी, वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिलना शुरू हो जाएगा, फिर मैं मेहनत करने लगूंगी, उसको रोकने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपना मेहनत का स्तर जो है वो बढ़ाना शुरू करूंगी, क्योंकि इंस्पिरेशन मिल रहा है यहां से। तो इसीलिए जब भी ईर्ष्या आएगा तो वहां क्या करना है? एक्सेप्टेंस, स्वीकार लो, कोई बात नहीं, उस आत्मा को है, उसके अपने भाग्य है ना, उसके अपने भाग्य है, मेरा अपना भाग्य है, मैं कंपेयर क्यों करूं? उसको कुछ मिला है तो मुझे भी कुछ मिला है ना, ये जरूरी नहीं कि वही चीज मिला है, कुछ और चीज मिला है ना मुझे। तो ये देखते हुए उस चीज को जब मैं एक्सेप्ट करती हूं तो वहां ईर्ष्या नहीं होगा, वहां इंस्पिरेशंस प्रेरणाएं लेकर के मैं आगे बढ़ती हूं। तो एक्सेप्टेंस स्वीकारना है जब ईर्ष्या होगा, और फिर उस आत्मा के जो गुण है, पॉजिटिव साइड है, वो हमें देखना है। और सातवीं डिफेक्ट नेक्स्ट है द्वेष, नफरत। किसी व्यक्ति को देख करके, आत्मा को देख करके बहुत घृणा आती है ना, नफरत आती है। क्यों? वो कहां से आया? उसने जो कर्म किया है मेरे साथ, उसने जो व्यवहार किया है मेरे साथ, जो नुकसान पहुंचाया है मुझे, तो उसके कारण से मुझे उस व्यक्ति से नफरत है। नफरत को कहां से निकालेंगे? नफरत कहां से निकालेंगे? एक तो कर्मों की गुह्य गति को समझना है, और दूसरी बात है दया दृष्टि, करुणा भाव उस व्यक्ति के प्रति भी हमें बढ़ाना हो, कंपैशन। जब हमारे अंदर वो दया, बाबा कई बार मुरलियों में कहा है ना कि लोग चिल्ला रहे हैं, आत्माएं पुकार रही है, आपको सुनने में नहीं आता है ना, तो वो तो दूर बैठी हुई आत्माएं तकलीफ में है, उनके प्रति नफरत नहीं है, घृणा नहीं है, लेकिन इन आत्माओं के प्रति मेरी घृणा है क्योंकि पास्ट कर्म जो उन्होंने किया हुआ है मेरे साथ उसके लिए नफरत है। लेकिन नफरत करने से नुकसान किसको है? किसको है? खुद को ही है, है ना। क्षमा भाव, क्षमा करना सीखना होगा। जो भी है हो गया ना, फुल स्टॉप लगा करके हम आगे बढ़े। फुल स्टॉप ऐसे फिर फुल स्टॉप ना लगा कर लगाए, फुल स्टॉप के साथ साथ हम उन आत्माओं को क्षमा करें। क्षमा करने के साथ साथ उन आत्माओं को दुआ दें। जितना हम दुआएं देते जाएंगे उस आत्मा के प्रति हमारा हिसाब किताब जो है ना वो चुकत होगा। अगर अंदर सूक्ष्म में नफरत है उस व्यक्ति के प्रति, मैं अवॉइड कर रही हूं उसको देखना, उससे बात करना अवॉइड कर रही हूं, वो भी एक प्रकार का नफरत है, है ना। तो इसीलिए दया भाव, करुणा भाव हमारे अंदर उन आत्माओं के प्रति जागृत करना होगा। हाँ जी, हाँ जी। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट कमी है भय। डर क्यों लगता है? किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को किसी व्यक्ति से डर लगता है, किसी से बात करना डर लगता है, किसी कॉकरोच से डर लगता है, चिपकली से डर लगता है, चींटी से डर लगता है। बहुत अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों के प्रति डर लगता है। ये डर कहां से आया? हाँ, कुछ फोबियाज है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जो पूर्व जन्मों में कुछ घटनाएं घटी हुई होती है, उस कारण से इस जन्म में उसका डर लगता है। अगर पिछले जन्म में डूब के मरे होंगे तो इस जन्म में पानी से डर लगता है, पिछले जन्म में आग से मरे होंगे तो इस जन्म में आग से डर लगता है। हाँ जी, सामने वाला बुराई कर रहा है तो डर, इग्नोर, उसको एनर्जी नहीं देना है। अगर मेरे बुराई कोई कर रहा है कि मेरा को क्या नुकसान हो रहा है, करने दो ना। हाँ, तो अगर मुझे ये, अरे बाप रे इसने ऐसा बोला, ये बोला, मान क्या सोचेंगे, मान शान का ये है, कौन बुरा करेगा। जैसे कोई कहते हैं ना, कोई जाकर के कुछ बुरा काम किया, यज्ञ का बदनाम हो गया, यज्ञ की बदनामी की। यज्ञ का भी बदनाम नहीं होता है, यज्ञ किसका है? बाबा का है, भगवान का यज्ञ है। यज्ञ का भी बदनाम नहीं होता है, बदनामी किसकी हुई है? उस व्यक्ति की बदनामी हुई है, है ना। तो अगर मेरे पीठ पीछे कोई कोई गलत कर भी रहा, कह भी रहा है, तो मुझे पता है कि मैंने नहीं किया है। अगर उसका हिसाब किताब है, मैं क्या करूं? तो ज्यादा सोचना नहीं, ओवर थिंकिंग, चिंता, चिंता भी कमी है। कंट्रोल मैंने नेग्लेक्ट कर दो ना, उसको उसके उसको भाव ही नहीं देना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। क्योंकि जब मुझे खुद को कॉन्फिडेंस है कि मैं जो कर रही हूं सही कर रही हूं, श्रीमत अनुसार कर रही हूं, तो कोई कुछ भी कहे तो फिर क्या फर्क पड़ता है। बड़े बड़े लोग आकर के बहुत बड़े काम करके गए हैं, उनको भी बहुत सुनना पड़ा, ब्रह्मा बाबा को भी सुनना पड़ा, है ना। हम कौन से खेती के मूली हैं, है ना। तो ब्रह्मा बाबा को ही इतना सुनना पड़ा, तो हम थोड़ा बहुत सुनते हैं तो इतना सेंसिटिविटी भी एक कमजोरी है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आया गया, है ना। अगर मजबूत बनना है तो वो तो बातें आएगी, है ना। थोड़ा जोर से बोलेंगे तो सुनने में आएगा। दूसरा व्यक्ति अगर कोई बार बार गलती वही दोहरा रहा है, उसका क्या करें? तो हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते ना। मैं तो कंट्रोल में खुद के ऊपर कंट्रोल रख सकती हूँ। हम बाबा कितने साल से मुरली सुना रहे हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, अपने आत्मा समझ बाप को याद करो, 8 घंटा योग करो, एटलीस्ट 4 घंटा योग करो। तो कितना हम कर रहे हैं बाबा, पेशेंस रखे हुए है ना, धीरज धरे हुए है, प्यार फिर भी हर रोज आकर के एक मीठे बच्चे सिखिला दे बच्चे यही कह रहे हैं। थोड़ा सा हमें रहम करना है ना। ये मैं कह रही हूँ क्यों नहीं हो रहा है, मैं जैसा को वैसा होना चाहिए। अरे भाई बाबा भी नहीं कर कहता ऐसे तो नहीं कर, और ही बाबा रहम करते हैं हमारे ऊपर है ना। तो इसीलिए हम भी बाबा समान रहम करना है हमें है ना। तो इसीलिए भय, भय को कैसे हम निकालें, भय के बारे में सोच रहे थे ना अभी, भय को कैसे निकाले। आत्मिक स्थिति को जितना हम बढ़ाते जाएंगे, को जो भी हुआ है पिछले जन्मों में जो हो गया है ना, लेकिन जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। देह भान में रह करके सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाया जा सकता। आत्मिक स्थिति को बार बार अभ्यास करना होगा, फिर हमारे अंदर से वो भय निकल जाएगा है ना। आत्मा समझना है और दूसरों को भी आत्मा देखना है। अगर कोई व्यक्तियों से डर लगता है, लोगों से डर लगता है, उसके पोजीशन को न देख करके उसको आत्मिक दृष्टि से देखे, वो भी एक आत्मा है, तो उनके उनके प्रति रेस्पेक्ट आएगा लेकिन डर नहीं लगता है ना। आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा तब भय कम होगा। और 9th, चिंता। चिंता चिता समान कहते हैं ना। चिंता को कैसे निकाले, चिंता को कैसे निकाले। चिंता तभी आता है जब भविष्य के बारे में सोचते हैं ना, क्या होगा कैसे होगा, ऐसा हो जाए तो कैसा होगा। तो इसीलिए बाबा, इसके लिए बाबा में विश्वास, बाबा में निश्चय अटूट होना होगा। जब बाबा में निश्चय अटूट है तो ये है ना, बाबा का चित्र है ना, मैं बैठा हूं, मैं हूं ना। जब भी चिंता होगा ना तो ये याद रखना, बाबा बैठे हुए हैं और ये कह रहे मैं हूं ना। तो बाबा में विश्वास जितना हम बढ़ाएंगे उतना चिंता कम होती जाएगी। और भी बातें हैं उसके लिए, लेकिन समय की कमी के कारण से फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमी है आलस्य, लेजीनेस। लेजीनेस कहाँ आएगा, कब आएगा, कुछ करने की उमंग उत्साह नहीं होता तो आलस्य आता है, लेजीनेस आता है। ये ट्राई करके देखना, देने की भावना, जितना हम देते जाएंगे ना फिर आलस्य भाग जाएगा। जैसे पानी है, अगर स्टैग्नेंट होता है, अगर एक जगह पर रुकी हुई होती है पानी, वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। बहता पानी शुद्ध है ना। अगर हमारी एनर्जी फ्लो हो रहा है तो और भी कर्म करने की उमंग उत्साह बढ़ता है। आलस्य को निकालने के लिए उमंग उत्साह लाना होगा। उमंग उत्साह लाने के लिए देने की भावना, जितना हम देते जाएंगे हमारा स्टॉक खत्म होता जाएगा और भरते जाएंगे और वो फ्लो होगा, एनर्जी फ्लो होता जाएगा तो आलस्य खत्म हो जाएगा। और अलबेलापन, वो बाद में प्रश्न उत्तर बाद में ले ले क्योंकि अभी समय नहीं है। अलबेलापन, अलबेलापन क्यों आ रहा है, कभी कब आता है अलबेलापन। कोई समस्याएं नहीं है तो अलबेलापन आ जाता है। जब समस्या आ जाती है फिर वहां 8 घंटा भी बैठ करके योग लगाएं, पुरुषार्थ करें, हर रोज मुरली सुनने के लिए सेंटर जाएं, बार बार योग लगाएं, समस्या नहीं है तो फिर अलबेले हो जाते हैं। अमृत वेला उठे कि उठे या मुरली सुने नहीं सुने, बराबर हो जाता है। अलबेले क्यों हो रहे हैं कि हम, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो ऊंचा नहीं है। ठीक है, परमिशन मिल गया, 11:15 बजे तक ले सकते हैं। अलबे आलस्य है, लेजीनेस, कुछ करने को उमंग उत्साह नहीं रहेगा। और अलबेलापन तो केयरलेसनेस, कहीं कहीं जा रहे हैं, कुछ कहीं छूट रहा है, कोई मतलब ऐसे फोकस नहीं है, लापरवाही है ना, ये अलबेलापन कह सकते हैं, केयरलेसनेस अलबेलापन। आलस्य को और एलाबोरेट कर, मना ये देने की भावना, ये अलग अलग प्रकार से आपके खजाने कितने हैं आपके पास, खजाने कितने हैं आपके पास, 9 खजाने हैं। कौन से खजाने? तन मन धन जन शुभ भावनाएं। तन से भी आप सेवा करो, मन से भी सेवा करो, वाचा से सेवा करो, मतलब देने की भावना हर चीज में, हर तरह से। जब हमारी एनर्जी फ्लो होता है तो फिर वो आलस्य ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अगर स्टैग्नेंट हो जाता है ना, रोक करके हम खजाना इकट्ठा कर रहे हैं, अपने पास रखेंगे तो बाबा भी बोलेगा कि आप अपने लिए भर रहे हो तो मैं नहीं दूंगा, है ना। सेवा, विश्व सेवा, हर तरीके से मुझे सेवा में लगाना है, हर खजाने को लगाना है, तन मन धन जन जो भी है सर, है ना। अलबेलापन, अलबेलापन निकालने के लिए ऊंचा लक्ष्य, हमारा लक्ष्य बहुत ऊंच। हाँ जी, मुझे सुनने में नहीं आ रहा है। हाँ, लैक ऑफ इम्पोर्टेंस, लेकिन निरंतर लगातार वो इम्पोर्टेंस रहे ना, वो बहुत बड़ी बात है ना। तो स्टार्टिंग में जब आते हैं, कोई बात नहीं, जब स्टार्टिंग में आते हैं बाबा के पास तो बहुत महत्व रहेगा, लेकिन बाद में धीरे 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 बहुत जैसे साधारण हो जाता है ना। तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंस हमेशा बना के रखे, और लक्ष्य, एक लक्ष्य हासिल कर दिया तो नेक्स्ट अपना जो लक्ष्य है ऊपर ऊपर के तरफ लगा के, जो अचीवेबल जो है, जो हम हासिल कर सकते हैं, ऐसे लक्ष्य। लक्ष्मी नारायण बनना है वो तो भविष्य में होगा, देवी देवता बनना है वो तो भविष्य में होगा, लेकिन इस जन्म में मेरा लक्ष्य क्या है? अगर इस घड़ी में शरीर छोड़ूंगी तो कैसे छोड़ना है मुझे, है ना। तो और उसके लिए मेरे अंदर, जो अंदर जितना हम अंतर्मुखी होकर के अपने डिफेक्ट्स को देखते जाएंगे, उसको निकाल, बार बार अलग अलग डिफेक्ट्स को निकालते जाएंगे, तो फिर अलग अलग लक्ष्य हमारे पास आएगा, मिलेगा, तो फिर अलबेलापन ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। और 12वीं बात है, 12th डिफेक्ट, सेंसिटिविटी, नाजुकपना। आजकल बहुत है ना, थोड़ा किसी ने कुछ बोल दिया, रूठ गए, बाबा के घर आना छोड़ दिया, थोड़ा किसी ने कुछ बोल दिया, रूठना, रूसना, रोना, ये सब कुछ, बुरा लग जाना, ये सब नाजुकपना है। उसको निकालने के लिए मजबूत बनना है, मैं शक्ति स्वरूपा हूं, शिव शक्ति हूं, ये स्वमान लेना नाजुकपना निकालने के लिए, मैं शिव शक्ति हूं। या भाई ये भी ले सकते हैं, महावीर हूं, हनुमान हूं, शिव शक्ति हूं, तो ये स्वमान लेंगे तो वो सेंसिटिविटी निकल जाएगा। जो ऊंच पद पाने वाले हैं वो सेंसिटिव नहीं होंगे, है ना। ऊंच पद पाने वाले बहुत मजबूत होंगे। आज सर जस्ट इमेजिन करो, अगर राजा बैठा हुआ है, किसने बोल दिया, वो रूठ करके सिंहासन ही छोड़ के चला गया, तो वो तो राज्य अनाथ रह जाएगा। तो वो मजबूत, जो अगर अटैक कर रहा है तो उसको काउंटर अटैक करने का हिम्मत रखने वाला ऐसा राजा होना चाहिए, है ना। तो हिम्मत रखने वाला, नाजुकपना निकालने के लिए शक्तिशाली, स्थिति बनाना है, शिव शक्ति की स्थिति सो मान लेना है। और 13वां शक, डाउट करना, ये भी कमी है, बहुत है ना, ज्यादा कई बार इसने ऐसा, शायद उसने ऐसा किया होगा, शायद इसने ऐसा किया होगा, कोई बड़े आकर के आपको डांटे तो ये ढूंढने की कोशिश की वो बड़ों के पास जाकर कंप्लेन किसने किया, तो मुझे आपने कमी को निकालना नहीं है, तो वो किसने कंप्लेन किया वो जाके ढूंढू मैं पहले, उसको ढूंढ करके उसके साथ रिवेंज ले लूं, तो शक खाम, अगर उसने किया नहीं होगा तो शक करते रहेंगे, शायद इसने किया होगा, शायद उसने किया होगा, शायद जो क्राइम पेट्रोल ज्यादा देखते हैं ना, क्राइम के वाला, तो उनके अंदर वो खुरापति, वो दिमाग ज्यादा होता है, तो शायद इसने किया होगा, शायद उसने किया होगा, वो होगा, जजमेंटल हो जाते हैं, इनसिक्योरिटी के कारण से ये होता है, अनुमान लगाना, डाउट माना अनुमान लगाना, अनुमान लगा, शायद इसने ऐसा किया होगा, उसने ऐसा किया होगा, तो इसको कैसे निकाले, इसको कैसे निकाले, अनुमान कैसे निकाले, अनुमान अगर हो रहा है कि शायद इसने किया होगा, उसने किया होगा, निश्चिंत स्थिति, ठीक है ना, अगर हो को अगर मुझे डांट भी पड़ रहा है कि अगर मेरी कमी है तो मुझे अपने आप को चेंज कर लेना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, किसने भी किया होगा तो उसका अपना कर्म है ना, निश्चिंत स्थिति, बाबा के ऊपर छोड़ देना है, निश्चिंत स्थिति और कर्मों के हिसाब किताब के ऊपर पूरी तरह निर्भर, माना पूरा निश्चय हो, पूरे मुझे अपने कर्मों पर फोकस करना है, दूसरों पर नहीं फोकस करना है, केवल मुझे अपने पर फोकस करना है, तो फिर शक अनुमान नहीं आएगा। फिर 14th, दूसरों को इंप्रेस करना या फिर उसी के इंप्रेशन में आ जाना, प्रभाव में आ जाना, प्रभाव करना या वो किसी के प्रभाव में आ जाना, ये किसकी कमी के कारण से होता है, हम किसको प्रभावित क्यों करना चाहते हैं, किसी इंसान को प्रभावित क्यों करना चाहते हैं, देह भान है ना, मैं भी कुछ हूं, उसको समझ पता चले ना कि मैं भी हूं, तो ये देह भान है, और किसके प्रभाव में आ जाना, ये तो बहुत अच्छा क्लास कराते हैं, बहुत अच्छा भाषण करते हैं, बहुत अच्छा सेवा करते हैं, मतलब बाबा पर प्रभावित होना बहुत ठीक है, लेकिन लोगों पर प्रभावित हो जाना, अच्छी चीज को अच्छा कहना ठीक है, लेकिन प्रभावित हो जाना माना, प्रभावित हो जाना माना, नहीं उनकी ही गुणगान, बाबा को छोड़कर के उनका ही गुणगान करते रहेंगे, और वो जो बोलेंगे भले वो बाबा की श्रीमत अनुसार नहीं होगा तो भी सही है, तो बाबा का ज्ञान एक तरफ हो जाता है, यही सत्वचन महाराज हो जाएगा, है ना, तो इसीलिए वो प्रभाव में नहीं आना, भक्त क्वालिटी के ना, भक्त के संस्कार जो है, 63 जन्मों में जो हमने भक्ति की है, तो वो संस्कार जब इमर्ज होता है ना, तो हम लोगों से प्रभावित होकर के उनके भक्ति करना शुरू करते हैं, उनका गुणगान करना शुरू कर देते हैं, हाँ ठीक है अच्छे हैं पुरुष, मतलब उनका ठीक है गुणगान करना अलग बात है, लेकिन भगत बन जाना उनके वो गलत बात हो जाती है, तो इम्प्रेस परखने की शक्ति की कमी, हाँ मतलब ना प्रभाव में आना है ना खुद के प्रभाव दूसरों पर डालना है। ब्रह्म बाबा भी कहते थे कि फोटो नहीं निकालो मेरा, ना शिव बाबा को याद करो, है ना, खुद किसी को भी मेरे देह में फंसाना नहीं है, खुद में ना फंसाना है ना फंसना है ना, ये बात है। ये सूक्ष्म है, ये मोह का बहुत सूक्ष्म रूप है, खुद में फंसाना या फंस जाना। और लास्ट वाला है लोक लाज मर्यादाएं, लोग क्या कहेंगे। तो अगर लोक लाज मर्यादाएं तो उस पर ज्यादा हम सोचेंगे तो क्या होगा, जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, है ना। आजकल तो ज्यादा नहीं है, सभी ब्रह्म कुमारी इसको बहुत श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब यज्ञ शुरू हुआ था उस समय तो बहुत जो यज्ञ के खिलाफ बहुत लोग बोलते थे, लेकिन उस समय जिन्होंने यज्ञ को सहयोग दिया उन आत्माओं का ज्यादा जमा हुआ है, क्योंकि लोगों का ना सुन करके वो यज्ञ में आते रहे, यज्ञ में सहयोगी बनते रहे, है ना। तो इसलिए अभी भी लोक लाज मर्यादा के बारे में सोचना नहीं है, सफेद कपड़ा पहनेंगे पता नहीं क्या होगा, क्या लोग क्या बोलेंगे, घर में प्याज लहसुन बनाना बंद कर देंगे तो पता नहीं मेरे रिलेटिव्स क्या बोलना शुरू करेंगे, क्या सोचेंगे, वो बाद में आकर के मेरी मदद करेंगे क्या। अगर रोज मैं सेंटर पे जाऊंगी तो फिर पता नहीं मेरे घर वाले क्या बोलेंगे करेंगे। लोक लाज मर्यादाओं को डोंट केयर करना है, उसके लिए क्या सोचना है, स्वमान कौन सा लेना है, बंधन। कई बार बंधन नहीं होता है, खुद का ही बंधन होता है, वो लोगों के तरफ से बंधन नहीं होता, खुद का ही बंधन होता है, उसके लिए क्या सोचना है, लोक लाज मर्यादाओं के बंधन से मुक्त होने के लिए क्या सोचना है। मुझे ना आप लोग जो बोल रहे सुनाई नहीं देते, पंखे की आवाज इतना ज्यादा है ना। हाँ, केवल ये देखना है, जैसे घोड़ा है ना, घोड़े का वो जो होता है यहाँ केवल लक्ष्य के प्रति उसका ये होता है, दृष्टि होता है। तो ऐसा मुझे क्या करना है मेरे जिंदगी में, मुझे क्या प्राप्त करना है, क्या मिल रहा है, उस पर फोकस करना। और दूसरों को मैं, हम तो दुख तो दे नहीं रहे हैं किसी को और किसी को का नुकसान नहीं हो रहा है, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं, तो किसी का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है तो क्यों सोचना है किसी के बारे में। वो बाद में आकर के हमको हमारी मदद तो नहीं करेंगे, मदद करने वाला कौन है, बाबा ही मददगार है। जब बाबा मददगार, जब भी समस्या आती है तो किसको याद करते हैं, हम बाबा को याद करते हैं। भले बाबा किसी न किसी आत्मा को निमित्त बना देता है वो अलग बात है, लेकिन बाबा से मदद मिलती है ना। तो इसीलिए लोक लाज मर्यादाओं के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, बाबा जो कह रहे हैं बाबा के श्रीमत अनुसार हमें करते चलना है सब कुछ, लक्ष्य याद रहेगा। तो ये मोटे मोटे रूप में 15 कमी कमजोरियों को आज निकाला था मैंने, तो आप अपने आप को देख सकते हैं कौन से ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म कमजोरियां हैं, और जितना जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जितना लंबे काल तक वो डिफेक्ट अपने अंदर रहेगा ना, जैसे बीमारी, अगर एक साल पुरानी बीमारी है तो जल्दी उसका क्योर हो जाएगा, अगर 15 साल पुरानी बीमारी है तो बहुत लंबा समय तक हमें ट्रीट करना पड़ता है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी जो जो डिफेक्ट्स है रिकग्नाइज करते ही, रियलाइज होते ही उसको निकाल देने की कोशिश कर देना है। सर्वशक्तिमान आत्मा हूं ये भी सोच सकते हैं, या फिर ये भी सोच सकते हैं कि इन आत्माओं को देने की भावना, विश्व कल्याणकारी आत्मा ये भी ले सकते हैं, विश्व परिवर्तक आत्मा ये भी ले सकते हैं, विश्व परिवर्तक आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा ये भी स्वमान ले सकते हैं। प्रभाव में न आने के लिए स्वमान कौन सा लेना है, किसी के प्रभाव में ना आए। एक बात दूसरा ना कोई वो भी, और उस व्यक्ति को भी ये सोचे ना कि ये भी एक आत्मा है, उन्होंने भी कहां से प्राप्त किया ये गुण, इन्होंने भी कहां से प्राप्त किया है, बाबा से ही प्राप्त किया है ना। तो ये सोचना है कि उन्होंने भी, उनको देने वाला बाबा है ना, तो मैं भी बाबा से लू ना, उनसे क्यों लू। ठीक है, चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति।